बिल्कुल
Recording in progress.
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यानी सऊदी अरब में और मिडल ईस्ट के बाकी जो गल्फ कंट्रीज होते हैं तो इनमें रमजान मुबारक की पहली तारीख है। तो हमारा ये दरस कुरान का सिलसिला आज से फिर रमजान मुबारक वाला शुरू होता है। अगरचे के हमारे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में होते हैं, वहाँ पर रमजान मुबारक मोस्ट प्रॉब्ली कल से शुरू होगा या परसों से हो सकता है। तो हमारे तरतीब आज से ये शुरू कर दी है रमजान मुबारक। जैसा कि अगर आपने जुमे का दर्स भी सुना होगा और सबको पहले से मालूम ही है कि ये उन खास अयाम में से है, उन खास लम्हात में से है जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खुसूसी बरकतों और खुसूसी नेमतों का ईमान वालों से वादा किया है। तो अगरचे के अल्लाह रब्बुल इज्जत के सारे ही महीने हैं, सारा वक्त ही अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों के साथ फजल और करम का और नेमतों का मामला फरमाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी मर्जी से, अपनी रजा से, अपनी पसंद से कुछ लम्हात को मखसूस किया खास नेमतों के लिए, खास तजल्लियात के लिए, और इसी तरह से कुछ मुकामात को मखसूस किया अपनी पसंद से खास तजल्लियातों बरकात के नुज़ूल के लिए, जैसे काबतुल्ला और मस्जिदें और मदीना शरीफ और बैतुल मुकद्दस और इस तरह के सफा वल मरवा। ठीक है, ये सब शायरुल्ला और इनके ऊपर खसूसी खसूसी जो है वो अल्लाह ताला के इनामात नाजिल होते हैं। तो इस तरह से रमजान मुबारक का महीना जो है ये दूसरे अय्याम से हट के है, ये एक अलग सी खसूसियत है और इसी वजह से ईमान वाले हमेशा से नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक इसको खसूसी तौर पर गुजारा करते हैं, इबादात भी बढ़ा देते हैं। इसके अंदर इबादात के सवाब भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो बढ़ जाते हैं। पहला अशरा जो है वो मगफिरत का, फिर रहमत का, फिर रहमत का, फिर मगफिरत का, फिर उद्कु मिन नार का, वगैरह जो भी इस तरह की तरतीब है। सो मेरे ध्यान में नहीं आ रही अभी बिल्कुल, अभी ऐसी बात करने को कोई इरादा भी नहीं था, जो हमारे तरफ से कुरान पढ़ने का ही इरादा था। तो बहुत सारी खसूसियात है ना इस महीने की, और एक और सबसे बड़ी खसूसियत इस महीने की क्या है कि इसका खसूसी ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान अजीम शान के साथ है। बल्कि मजीद तफसील तो इसकी ये है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अपनी सहाइफ और किताबें नाजिल फरमाई वो सब की सब ही रमजान मुबारक के अंदर नाजिल फरमाई, यानी तौरात भी, इंजील भी, जबूर भी और मसाहिफ इब्राहिमी भी, ये सब भी रमजान मुबारक में ही नाजिल किया अल्लाह ताला ने। ठीक है, कुरान मजीद के बारे में तो सबको ही मालूम है, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतुल कद्र। ठीक है, ये लैलतुल कद्र जो कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की कोई रात होती है उसमें हमने इसको नाजिल किया। तो लेकिन कुरान मजीद में और दूसरे किताबों के अंदर फर्क ये है कि रमजान मुबारक में कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया ना, तो वो पूरा का पूरा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल नहीं किया, बल्कि वो आसमाने दुनिया पर नाजिल किया, आसमाने दुनिया के ऊपर ये पूरा का पूरा लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ, और फिर वहां से तदरीजन तदरीजन यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वाकयात के हिसाब से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वक्तन फवक्तन थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। ठीक है, तो वो जो नुजूल है वो तो सारा सारा साल चलता रहा, सारे यानी जितने नबी अलैहिस्सलाम के नबूवत के अय्याम थे उनमें ये तदरीजन ये नुजूल का सिलसिला चलता रहा। तो लैलतुल कदर के अंदर तो यकमुश्त जो नाजिल हुआ है वो आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ है, लेकिन वो भी तो नुजूल ही है ना, आसमान दुनिया हमारी दुनिया का ही आसमान है, यानी कि हमारे लिए वो नाजिल किया गया ना, तो इस वजह से इसका खसूसी ताल्लुक जो है वो कुरान मजीद के साथ भी बन जाता है। तो कुरान मजीद के ऊपर भी फिर उम्मत जो है वो ज्यादा वक्त लगाया करती है तिलावत करके, इसके सवाब बरकात हासिल करने के ऊपर भी, तरावी में कुरान मजीद को सुनने के ऊपर भी, और कुरान मजीद को पढ़ने और समझने और इसके दुरूस और इसके जो तफसीर के सेशन वगैरह होते हैं इनके ऊपर भी ज्यादा एम्फेसिस उम्मत का हमेशा से रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है, हमारा इसमें कोई 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 बड़ाई नहीं है, हमारा कोई इसके अंदर कमाल नहीं है कि हम अल्लाह की तौफीक से जो है वो यहाँ पर कुरान मजीद के दर्स को सुनने और पढ़ने की नियत से जमा हुए हैं। अल्लाह ताला सब के आने को कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए इल्म नाफे का सबब बनाए, और इसको फिर अमले सालेह की तौफीक का भी सबब बनाए, और इखलास के साथ ये सारे काम यानी इल्म हासिल करना भी इखलास के साथ यानी सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर इल्म भी हासिल करना हो और अमल भी सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर हम करें, और अल्लाह ताला फिर इखलास को तो कबूल फरमाते ही हैं। तो इस थोड़ी सी तमहीद के साथ जो है वो हम क्लास शुरू करते हैं। आयात हमारी वही चल रही हैं जो कि सूरह अनाम की तफसीर खवातीन की क्लास के अंदर सारा साल चल रही थी। पिछले साल के रमजान मुबारक में हमने सूरह अनाम को पढ़ना शुरू किया था, और अब तक माशा अल्लाह हम आयात नंबर 77 तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो साल तो हमारा गुजर गया 77 आयात पढ़ने में। तो कुरान मजीद का तो मामला यही है कि इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी गहराई रखी है हमारे लिए, ऐसी ऐसी हिदायात हैं कि पढ़ते चले जाएं, समझते चले जाएं, ये कोई कहानी की किताब तो है नहीं कि जिसको हमने ख़त्म करके रख देना है। ठीक है, ये कोई कोर्स की किताब तो है नहीं कि हमने एक ग्रेड को पास करने के लिए हमने इसको पढ़ना है और फिर उसके बाद हम कोई और किताब पढ़ेंगे अगले ग्रेड को पास करने के लिए। ठीक है, ये कोई कोर्स की किताब तो है नहीं इस तरीके से, स्कूलिंग की कॉलेज की तो किताब है नहीं, ये तो किताब हिदायत है। ठीक है, ये तो डायरेक्शंस की गाइडेंस की किताब है, और हमें तो हर वक्त गाइडेंस की जरूरत है, हमें तो अपनी सारी जिंदगी जो है वो हिदायत की और रहनुमाई की जरूरत है। तो इस वजह से कुरान मजीद तो हर वक्त हमारे साथ रहना है, और इसके अंदर से हर वक्त हमें हिदायत मिलती रहेंगी अगर हम इसको हिदायत की नीयत से अप्रोच करते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना कुरान मजीद के अंदर जब ऐसा मामला है कि ये तो मुस्तकिल की किताब है, ये तो मुस्तकिल की का हिदायत नामा है और हर एक के लिए है, अल्लाह के हर बंदे के लिए है, और हर मौके और जिंदगी के हर मोड़ के लिए है, जिंदगी के हर शोबे के लिए है, तो इसकी फिर अल्लाह ताला ने एक तरतीब भी जरा मुख्तलिफ रखी है। जैसे इंसानों की लिखी हुई किताबें होती हैं ना, उस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी किताब नहीं रखी है कि इसमें जो है वो शुरू से जो है वो तमहीद बनेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी और फिर आखिर में जाके सबसे ज्यादा मुश्किल मजामीन आखिर के अंदर होंगे। ठीक है, जिस तरह से एक पूरी रब्त में एक किताब बज़ाहिर चलती है, कुरान मजीद के अंदर रब्त तो है, कुरान मजीद के अंदर भी रब्त मौजूद है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है वो दूसरा पारा पढ़ने से पहले, अगर पहला पारा अगर आपने नहीं पढ़ा तो दूसरा पारा आपको समझ में नहीं आएगा, अगर दूसरा नहीं पढ़ा तो आपको तीसरा समझ में नहीं आएगा, या आपने सूरह फातिहा जब तक घोल के नहीं पी ली उस वक्त तक आपको सूरह बकरा समझ में नहीं आएगी, आप पढ़ ही नहीं सकते सूरह बकरा, अगर सूरह बकरा नहीं समझी तो सूरह आल इमरान नहीं समझ सकते। ठीक है, तो कुरान मजीद में ये वाली तरतीब नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कुरान मजीद को हम कहीं से भी अप्रोच करेंगे तो वो हमारे लिए हिदायत का सबब बनेगी। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बनाना है हमारी हिदायत का सबब। ठीक है, अल्लाह ने इसको हिदायत का सबब बनाया है, बनाना है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जो दुनियावी किताबें लिखने वाले दुनियावी ऑथर्स होते हैं ना, तो वो तो उनका कलाम होता है, तो उनकी जितनी छोटी सी एक इस्तेदाद होती है, छोटी सी एक समझ होती है हम जैसे इंसानों की जो किताब लिखते हैं, तो उनकी तो फिर वो तो हर पढ़ने वाले को नहीं जानते ना। ठीक है, उन्होंने किताब तो लिख दी अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात, ठीक है, अपने इल्म की बुनियाद पर उन्होंने किताब तो लिख दी, लेकिन क्या उनको पढ़ने वालों का भी इल्म है कि कौन कौन मेरी किताब पढ़ेगा? क्या उनको इस बात का इल्म है? नहीं। किसी लिखने वाले को इस बात का इल्म नहीं है कि कौन कौन उसकी किताब पढ़ेगा। किसी लिखने वाले को इस बात का इल्म नहीं है कि जो पढ़ने वाला होगा तो उसकी जिंदगी में क्या हालात चल रहे होंगे। किसी लिखने वाले को इस बात का इल्म नहीं है, ठीक है, किसी लिखने वालों को इस बात का इल्म नहीं है कि जब वो शख्स मेरी किताब पढ़ रहा होगा तो उसको किस चीज के अंदर हिदायत की जरूरत है, किस मामले में उसको गाइडेंस की जरूरत है। किसी ऑथर को इस बात का इल्म नहीं है, कितना ही नेक क्यों ना हो, कितना ही मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, हत्ता के कुछ कशफ और इल्हाम भी उसको हासिल हो, उसको भी इस बात का पता नहीं है कि पढ़ने वाले को किस चीज की जरूरत है इस वक्त। लेकिन हमारे परवरदिगार को इन सब चीजों का इल्म है कि कौन कौन मेरी किताब पढ़ेगा, किन किन हालात में मेरी किताब पढ़ेगा, और उसको किस किस काम में हिदायत की जरूरत है, क्या उसको सुनना सुनना चाहिए, राइट, क्या उसके लिए जो है वो फायदेमंद है। अल्लाह ताला को हर हर चीज का इल्म है। तो इस वजह से कुरान अजीम शान जो है ना, इसको हम किसी दूसरी किताब के ऊपर कयास नहीं कर सकते, हत्ता के हदीस की किताब के ऊपर भी कयास नहीं कर सकते, क्योंकि हदीस की किताबें भी जो हैं ये भी इंसानों की मुरतब की हुई है, तरतीब कि कौन सी हदीस पहले रखनी है, कौन सी हदीस बाद में रखनी है, ये अल्लाह की मुरतब की हुई डायरेक्टली नहीं है। अल्फाज तो नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, अकवाल और अहवाल तो नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल और अहवाल हैं हदीस के अंदर, ठीक है, लेकिन जो अबवाब मुरतब किए गए हैं, जो चैप्टर्स बनाए गए हैं बुखारी शरीफ के अंदर, वो किसके बनाए हुए हैं? वो इमाम बुखारी के बनाए हुए, राइट, वो इमाम मुस्लिम के बनाए हुए हैं, वो इमाम अबू दाऊद के बनाए हुए हैं। अल्फाज उन्होंने नहीं बनाए, अल्फाज तो नबी अलैहिस्सलाम के हैं और पक्के ठक्के हैं, सही हदीसें में बिल्कुल, हमें हदीसों में हमें बिल्कुल पता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया था, लेकिन उसकी तरतीब तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिजी और अन्नों ने करी है ना। उनको तो नहीं पता था कि पढ़ने वाला जो है मेरी इमाम मेरी जो सही बुखारी पढ़ेगा, इमाम बुखारी को तो नहीं पता था कि उसके अहवाल क्या चल रहे होंगे, उसको किन चीजों की हिदायत की जरूरत होगी। इमाम बुखारी को तो क्या क्या ख्याल है, नबी अलैहिस्सलाम को पता था क्या? नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि जो मेरी हदीस की किताबें पढ़ेगा उसके क्या अहवाल चल रहे होंगे? नहीं, इवन नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता था, ठीक है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम भी आलिमुल गैब नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम भी खुदा नहीं है, राइट, वो भी तो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है ना। कुरान का मामला ऐसा नहीं है, कुरान के अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं है, कुरान की तरतीब ये नबी अलैहिस्सलाम की बनाई हुई तरतीब नहीं है, राइट, ये तो अल्लाह की बनाई हुई तरतीब है, खालिक की भी, मालिक की भी, राजिक की भी, राइट, अलीमुल खबीर की भी, और अला कुल्ली शैइन कदीर की भी, जो कि हर शय के ऊपर कुदरत रखता है, ठीक है। तो कुरान का जो हम दर्स अभी सुनने जा रहे हैं, ये हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई तरतीब को पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशंस बेशक वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्लास के अंदर जो 103 खवातीन यहाँ मौजूद हैं या दो खवातीन मौजूद हैं 102, और यहाँ मर्दों में पता नहीं कितने मेरे सामने नजर नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता आप कौन लोग हैं, थोड़ा बहुत किसी के बारे में पता होगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में सवालात आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में। और किसी को भी कुछ नहीं पता है इनके बारे में, लेकिन अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है, ठीक है। अल्लाह है ही अलीमुल खबीर ज़ात। अगर कोई अलीम नहीं है, कोई खबीर नहीं है, तो वो अल्लाह है ही नहीं। अगर कोई कदीर नहीं है, तो वो अल्लाह है ही नहीं। हम तो उसी को अल्लाह मानते हैं जो कि अलीम, खबीर, बसीर, समीर और कदीर सब कुछ है। हम उसी को अल्लाह मानते हैं, उससे कम कोई भी चीज हो हम उसको अल्लाह मानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस इस्तेहजार के साथ, इस ध्यान के साथ, इस सोच के साथ और फिक्र के साथ हम कुरान मजीद को अप्रोच करें, फिर देखें ये कुरान मजीद जो है उसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहाँ पहुंचाता है, अपना कुर्ब अता फरमाता है, उससे ज्यादा और कहाँ पहुंचा है, और कहाँ हमें जाना है। हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो उसके जिम्मन में आ जाती है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आयात के अंदर जो हम बिल्कुल, बहुत सारे लोग पहली दफा क्लास सुन रहे हैं, पीछे का उन्होंने कुछ नहीं सुना, कोई मसला नहीं है। अगर आपने पीछे के दर्स नहीं सुने, हाँ इल्म की खातिर आपको सुनने चाहिए, अगर वक्त है तो उल्टे सीधे कामों में लगाने की बजाय कुरान मजीद की तफसीर सुनने के अंदर आप वक्त लगा लें अपना। लेकिन अगर नहीं सुना तो ऐसा नहीं है कि आप समझ में नहीं आएगा, अब आपको पता नहीं चल रहा कि क्या बात हो रही है। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो आप तक बात पहुंचवा रहे हैं और आपके लिए फिर वो चीज यानी फायदे की चीज है। बिल्कुल भी इस किस्म का जहन में बात ना रखें कि मुझे तो फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने तो पिछली पिछली क्लास सुनी ही नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात के अंदर जो फरमाया था उसका थोड़ा सा हम रिकैप करके, कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से बजाह से बराह रास्त खिताब चल रहा है पिछली कई आयात से, ठीक है, कि आप सल्लम ऐसे कहिए, आप सल्लम ऐसे कीजिए, आप सल्लम इन लोगों के साथ ये मामला कीजिए। उसी तरीके से इस ग्रुप ऑफ आयात जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, आयात नंबर 68 से लेकर के 73 तक, तो उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम को और ईमान वालों को खिताब करते हुए फरमाया था कि जो लोग हमारी आयात में झगड़ते हैं, फजूल बातें करते हैं, तो आप उनसे किनारा कशी अख्तियार कीजिए, एराज कीजिए, हत्ता कि वो ये हरकत छोड़ करके जो है ना वो किसी दूसरे काम में लग जाएं। और अगर आपको शैतान हमारा ये हुक्म भुला दे, यानी नबी अलैहिस्सलाम का शैतान तो मुसलमान हो गया था, लेकिन ईमान वालों से कहा जा रहा है कि अगर शैतान तुम्हें ये बात भुला दे ना जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया था किनारा कशी इख्तियार करने का, तो जैसे ही तुम्हें याद आए तो उस वक्त तुम उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो, क्योंकि शैतान भुलाने का काम करता है तो याद दिलाने का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तो करता है ना फरिश्ते के जरिए से। तो हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भी रखा हुआ है, एक शैतान भी रखा हुआ है, कम अज कम एक फरिश्ता एक शैतान, ठीक है। और इसी तरीके से फरिश्ते के पीछे जो नेकी की तलकीन करने वाले फरिश्ता सिफत इंसान होते हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखे हुए हैं याद दहानी कराने के लिए, और शैतान के पीछे पूरी शयातीन की एक फौज भी होती है वो अल्लाह ताला ने रखी हुई है अल्लाह का हुक्म भुलवाने के लिए। अब हमारा काम क्या है कि हम फरिश्तों और फरिश्ता सिफत इंसानों से जुड़ें और शैतान सिफत इंसानों से कटें, उनसे हट करके रहें, कट करके रहें, ठीक है। तो ये भुला देगा तो भाई याद दहानी का भी निजाम अल्लाह ने रखा हुआ है, तो जैसे ही याद दहानी हो तो उस वक्त उनकी बात मान लो, उस वक्त उनकी बात मान लो, ठीक है, और उस वक्त फिर किनारा कशी इख्तियार कर लो उन लोगों से जो कि हमारी आयात में झगड़ते हैं। और तुम्हारे ऊपर अगर कोई मजबूरी की वजह से उनके साथ बैठना पड़ रहा है तुम्हें, वमा अलल्लज़ीन यत्तकून मिन हिसाबिहिम, तो तुम्हारे ऊपर इसका कोई हिसाब नहीं होगा क्योंकि तुम जो है वो मजबूरन किसी मकसद से बस वहां पे गए थे, काम काज करने के लिए गए थे, तो उनके झगड़ने उगड़ने में तुम्हारा मामला नहीं था, तुम्हारा शमूलियत नहीं थी, जरूरतन तुम उनके पास मौजूद थे ना काम काज की वजह से, तो तुम्हारे ऊपर उनका गुनाह नहीं आएगा, ठीक है। वमा अलल्लज़ीन यत्तकून, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं उनके ऊपर गुनाह नहीं आएगा, ठीक है। क्या मतलब कि उन लोगों के साथ तुम्हारा कल्बी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मजबूरन तुम्हें उनके पास जाना पड़ रहा है किसी दफ्तर के काम की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों के पास जाओगे जो गुनाह की जिंदगी में मुब्तला हैं, और अल्लाह ताला की आयात के उल्टे सीधे मानी निकालते हैं, और दोस्ती की नीयत से तुम उनके पास जाओगे तब तो तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा, तब तो तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा, तुम्हें उनके गुनाह में से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फरमान है ना, वमा अलल्लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, ये खाली मजबूरी के लिए ऐसे लोगों के पास जाने की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर उसका गुनाह नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर फिर भी जिम्मेदारी है ज़िक्रा कि उनको नसीहत करते रहो, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम उनकी उनकी खैरख्वाही करते रहो, उनको कोई ना कोई नसीहत करते रहो। लअल्लहुम यत्तकून, इस उम्मीद के साथ कि वो भी तकवा वाले बन जाए, जैसे तुम तकवा वाले हो उसी तरह वो भी तकवा वाले बन जाए। तो नसीहत करने के लिए पहले खुद भी तकवा का कुछ दर्जा हासिल करना होता है, फिर उसके बाद नसीहत दूसरों को करनी होती है इस नीयत से कि वो भी मुत्तकी बन जाए। ठीक है, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, ठीक है, कि छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी को, सॉरी, जिन्होंने दीन को जो है वो अपने दीन को खेल तमाशा बना के रखा हुआ है ना, उनसे तुम अलग हो जाओ और ऐसे अलग हो कि तुम्हें उनकी इस रविश से नफरत हो, तुम्हें उनकी इस रविश से, कि यानी दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है उन्होंने अपने, तो तुम्हारे दिल में नाराजगी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस नाराजगी के साथ तुम उनसे अलग हो जाओ, और ये भी याद रखो कि दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाले रखा है, तो वो जो ये हरकतें कर रहे हैं ना कि उन्होंने अपना दीन बना लिया है, जो असल दीन अल्लाह ताला का है उसको जो है वो मस कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो ये बात याद रखो कि वो बेचारे धोखे में मुब्तला है, वो बेचारे धोखे में मुब्तला है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो उनसे नफरत ना करो, उन लोगों से नफरत ना करो, उनको हकीर ना समझो, ठीक, उनको हकीर और काबिल नफरत ना समझो, उनके गुनाह को काबिल नफरत समझो, गुनाह करने वालों को काबिल नफरत ना समझो, बल्कि उनको काबिल क्या कहते हैं, काबिले रहम समझो, काबिले रहम, क्योंकि जब कोई धोखे में पड़ करके गलत काम कर रहा होता है तो वो तो काबिले रहम होता है ना, काबिले रहम होता है ना कि बेचारा धोखे में धोखा खाया हुआ है, इस वजह से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो याद रखो कि वो धोखे में पड़े हुए हैं, वगर्रतहुमुल हयात दुनिया, उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है, सो बी मर्सीफुल टूवर्ड्स देम, बी मर्सीफुल टूवर्ड्स देम। ठीक है, वज़क्किर भी, और नसीहत करते रहो कुरान मजीद के जरिए से उनको, ज़क्किर भी कुरान मजीद के जरिए नसीहत करते रहो, अन तुब्सल नफ्सुम बिमा कसबत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफी, क्योंकि वो अगर इसी गुनाह में पड़े रहेंगे ना तो इसका उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, नुकसान में वो फंस जाएंगे, और फिर कोई उनको उस नुकसान से नहीं निकाल सकेगा सिवाय अल्लाह के, अल्लाह वलियुन, बस अल्लाह शफीउन, उसके अलावा वो नहीं निकल सकेंगे, अपना हाथ पैर मार करके वो उस मुसीबत से नहीं निकल सकेंगे, इस वजह से उनको मुसीबत से बचाने के लिए उनको नसीहत करते रहो, समझाते रहो, और अगर वो फंस गए ना अपने गुनाहों की मुसीबत में, वह इन तादिल कुल अदल ला युखद मिन्हा, तो फिर वो उसके बदले में कुछ भी देना चाहेंगे ना, तावान के तौर पर, फिदिये के तौर पर, पेमेंट के तौर पर, उनसे कुछ कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ तौबा कबूल की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुरान मजीद के दूसरे मुकामात से हमें क्या पता चलता है कि सिवाय तौबा के और कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी उनसे। उलाइक अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, ये जो वो गिरफ्तार हुए हैं ये अपने किए के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, किसी दूसरे की वजह से ये मुसीबत में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि अपने गुनाहों की वजह से मुसीबत में मुब्तला हुए हैं, और ये मुसीबत कैसी है, लहुम शराब मिन हमीम व अजाब अलीम बिमा कानू यकफुरून, कि उनको गर्म पानी पीना होगा और अजाब है ये दर्दनाक, किस वजह से, कि उन्होंने नसीहतों को इग्नोर किया, नसीहतों का इनकार किया। बिमा कानू यकफुरून का मतलब क्या है, कि उन्होंने नसीहत करने वालों का इनकार किया या नसीहत करने वालों की नसीहतों का इनकार किया, उन्होंने इस तरह कहा कि नहीं चाहिए हमें ये नसीहत, हमें ये मशवरे मत दो, हमें नसीहतें मत करो। इस वजह से वो इस अजाब में मुब्तला हुई है जिसके अंदर उनको गर्म पानी खौलता हुआ पीना पड़ेगा और एक दर्दनाक उनको अजाब हो रहा है। लेकिन तुम नसीहत फिर भी करते रहो, तुम उनको नसीहत फिर भी करते रहो, क्योंकि तुम्हें हुक्म दिया है मैंने, तुम्हारे खालिक ने, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें हुक्म दिया है। वज़क्किर भी, उनको नसीहत करते रहो, दरस कुरान की शक्ल में करते रहो, दरस कुरान की जो है वो समरीज बना बना करके भेजते रहो उनको, उनके जो है वो क्लिप्स बना बना करके उनको भेजते रहो, उनके साथ वैसे फॉलो अप करते रहो जब मुलाकात हो। जी आपने सुना था, क्या आपने वो बात पढ़ी थी, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में, नसीहत करते रहो। ठीक है, हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इस काम के अंदर लगा रहे, क्योंकि ये अल्लाह का हम पर हुक्म है, अल्लाह का हमें हुक्म है। ठीक है, कह दीजिए उनसे कि क्या हम अल्लाह को छोड़कर के किसी और को पुकारना शुरू कर दें, अनदउ मिन दूनिल्लाही, जो कि ना हमें नफा पहुंचा सकता हो ना हमें नुकसान पहुंचा सकता हो। मा ला यनफउना वला यदुरुना वनुरद्दु अला आकाबिना बादा इज़ हदानल्लाहु, और हम अपनी एड़ियों के ऊपर पलट जाएं, हम पीठ फेर दें, अल्लाह ने जब हमें हिदायत दे दी उसके बाद हम पीठ फेर दें। नसीहत करने वाले की तरफ से जो है वो यानी बेएतनाई बरतना शुरू कर दें। ठीक है, उनसे कह दीजिए कि ये हम नहीं कर सकते, बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जो है ना यानी ये अजीब मखमसे में मुब्तला नहीं हो सकते कि एक बात को हम सच मान भी रहे हो और फिर उसको झूठा भी कहना शुरू कर दें। राइट, हम ये डबल माइंडेड किस्म की पर्सनालिटी, एक एब्सोल्युटली कंफ्यूज किस्म की पर्सनालिटी नहीं बन सकते, एक बात को सच भी कह रहे हो और साथ साथ उसको झूठ भी कह रहे हो, ये क्या बात हुई भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कह दीजिए उन लोगों हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा कर लेंगे ना तो क्या होगा, कल्लज़ी इस्तहवतहु शैतानु फिल शयातीनु फिल अर्ज़ खैरान, अगर हमने ऐसा किया ना तो हमारी तो हैसियत उस जैसी बंदे की हो गई, हो जाएगी कि जिसको के शैतान ने ना रास्ते से गुमराह कर दिया, अब वो हैरान परेशान खड़ा खड़ा हुआ है रास्ता छोड़ करके इधर उधर कहीं भूल भुलैयों के अंदर हैरान परेशान खड़ा हुआ है कि उसको कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। हाना के लहू असहाबु यदउनहु इलल हुदा अतिना, हालांकि लोग उसको बुला रहे हैं रास्ते की तरफ वापस कि आ जाओ हमारी तरफ, हम रास्ते पर हैं, हमारे पास वापस आ जाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा बात, हैरान खड़ा हुआ है, बुलाने वालों को इग्नोर कर रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा, कह रहा है कि मैं भी बहुत मसरूफ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इसका बाद में देखूंगी, बाद में सोचूंगा इसके बारे में कि मुझे आपकी बात सुननी भी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, अभी तो मैं खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करता रहूंगा, अभी खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करता रहूंगा कि मैं अपनी हैरानी और परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। जो मुझे बुला रहे हैं, नसीहत करने वाले, मेरे खैर ख्वाह अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैंने उनकी बात नहीं माननी। तो अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को और ईमान वालों को कह रहे हैं कि आप इन काफिरों को कह दीजिए हम ऐसी कंफ्यूज पर्सनालिटी नहीं बनना चाहते, हम ऐसे अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन में मुब्तला नहीं होना चाहते कि हमें समझाने वाले समझा भी रहे लेकिन हम जिद पे अटे हुए हैं कि नहीं मैंने बात नहीं माननी है तुम्हारी, मैंने तो हैरान परेशान खड़े रहना है, मैंने तो अपनी मुसीबत वाली जिंदगी के अंदर ही रहना है और मैं खुद ही इसमें से निकलने की कोशिश कर लूंगा बस किसी तरीके से। हम कितने कितने हम में से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल यही एटीट्यूड हमारा है, हमें कोई बात समझाता है हम उसको बिल्कुल रद्द कर देते हैं, हालांकि मुसीबत से निकलने का वो रास्ता बता रहा है, कुरान की रोशनी में बता रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की रोशनी में और खैरख्वाही के साथ बता रहा है, लेकिन हम बिल्कुल रद्द कर देते हैं, टुकड़े बहुत रोते हैं, लंबी लंबी कहानियां बहुत सुनाते हैं, लेकिन आगे से जब हमें कोई उसके ऊपर नसीहत की जाती है हम कहते हैं आप अपने काम से काम रखें, आप हमें नसीहत करने की कोशिश ना करें, तो फिर वही अपने अपनी रट के अंदर जो है वो हम फंसे रहते हैं। ठीक है, और जिंदगी के जो कीमती लम्हात हैं जो किसी वक्त खत्म हो जाएंगे उन लम्हात को जाया करते रहते हैं। राइट, जिद की वजह से, अनानियत की वजह से, हठ धर्मी की वजह से या हम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो, राइट? क्या हम ऐसा नहीं कर रहे होते? दिल पे हाथ रख करके बताएं, क्या हम ऐसा नहीं कर रहे होते? ठीक है, तो कह दीजिए इन लोगों से, अल्लाह ताला फिर अपने नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्ना हुदल्लाही वल हुदा, कि कामयाबी और मुसीबत से निकलने के लिए जो हिदायत है ना, ये तो अल्लाह की तरफ से जो हिदायत है, सिर्फ वही रास्ता है, उसके अलावा और कोई हिदायत नहीं है जो कि तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल सके। सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है, कुरान का रास्ता, नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते को छोड़ करके, अच्छा शेख साहब को आपने खूब अपने दुखड़े सुना दिए, खूब अपनी जो है ना वो मुसीबतें कि सास ने मेरे साथ ये किया, और शौहर ने मेरे साथ ये किया, और नंद ने मेरे साथ ये किया, और उसने मेरे साथ ये किया, और फलाने ने मेरे साथ ये किया, मेरी जिंदगी ये खराब है, मेरी जिंदगी ये खराब है, राइट? जब शेख साहब ने 2 घंटे आपकी सुन ली, उसके बाद शेख साहब ने आपको तौबा की तरफ कुछ बात करी कि अल्लाह ताला आपको मुसीबत से निकालेगा, आप जरा पर्दा भी तो करना शुरू करें ना, अल्लाह का हुक्म है, राइट? आप जरा नमाजी में पढ़ना शुरू करें, आप जरा झूठ और गीबत जो है वो अपनी जिंदगी से खत्म करें, उधर ही शेख साहब के खिलाफ, शेख साहब नहीं नहीं रहने दीजिए, बस ये सब मुझे नहीं करना, ये सब मुझे नहीं करना, तो फिर अब आपको कौन सा, कौन सी आपको सोल्यूशन बताएं इसका? चाहते हैं कि हमें अपनी हमारी मर्जी का सोल्यूशन बताएं, हमारी मर्जी की दवा हमें दें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, ए नबी अलैहिस्सलाम, आप इन लोगों से कह दीजिए तुम्हारी अपनी मर्जी की दवाएं नहीं चलेंगी, सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आई है वही हिदायत चलेगी, वही हिदायत है, उसके अलावा और कुछ हिदायत नहीं है। तो शेख साहब जो तुम्हें तौबा का कह रहे हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, ये अल्लाह के हुक्म की वजह से कह रहे हैं, और तुम्हारे मुसीबत नामे से निकलने का जो रास्ता है वो इसके अलावा और कोई है ही नहीं। साइंस करो, टेक्नोलॉजी करो, कंप्यूटर साइंस के अंदर तुम पीएचडी कर लो, तुम फलानी डिग्री लेकर के आ जाओ, या तुम जो है वो अपनी सास को बेवकूफ बनाने के लिए 10 तरतीबें बना लो, जो भी तुम करो, तुम अपनी मुसीबत से नहीं निकल सकोगे। इन्ना हुदल्लाही वल हुदा, सिर्फ अल्लाह की तरफ से जो नसीहत आई है, जो कि अल्लाह ने अपनी आवाज की शक्ल में नहीं, कि नहीं अल्लाह मुझसे डायरेक्ट बात करेगा तब मैं उसकी बात मानूंगी, नहीं, अल्लाह ने अपने कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से जो है वो हिदायत नाजिल फरमाई है, और नबी अलैहिस्सलाम भी दुनिया से पर्दा फरमा गए, हमारे मशायख भी दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब उनकी भी आवाज हमें नहीं आती, कब्र से निकल करके उनकी भी आवाज हमें नहीं आती, अब जो जिंदा मशायख मौजूद हैं, जिंदा दावत और तबलीग की मेहनत करने वाले लोग मौजूद हैं, वही हमें बताएंगे कि हुदल्लाही क्या है, वो हमारे अहवाल सुनेंगे, हमारे मैसेजेस पढ़ेंगे, फिर हमें बताएंगे कि इस मुसीबत में से निकलने का क्या रास्ता है, और वही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता। कुल इन्ना हुदल्लाही वल हुदा, क्या समझ में आया? बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर दी इस फकीर ने, ठीक है, समझ में आती है बात? इन्ना हुदल्लाही हुदल हुदा का मतलब क्या होता है, और ये हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना? तो खसूसी तौर पर तो वो लोग जिन्होंने अपने दुखड़े रोए हैं लेकिन बात नहीं मानी, तो वो याद रखें इस बात को, ठीक है। किसी ने आप एक मैसेज लिखा है तो हम पढ़ लेते हैं, कि किसी ने बताया कि लोग व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं अगर कोई क्लास का बताओ या कुछ भी समझाने की चीज भेजो, तो फिर क्या करें? आप उनके लिए दुआ करें, उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो अब तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं भेज सकते ना, तो एक तो उनके लिए दुआ करें, और दूसरा ये कि जब आपकी उनसे मुलाकात हो तब उनके सामने बात छेड़ें, या अच्छे अंदाज में उनको समझाएं कि भाई ठीक है, कुछ ना कुछ करें, अल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल में भी तरीका डालेगा कि कैसे उनसे बात करनी है, और अल्लाह ताला उनके दिल को भी नरम फरमाएंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, अल्लाह ताला करेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया तो भाई किसी और जिसने ब्लॉक नहीं किया है, अब उसकी तरफ मेहनत करें, ठीक है ना? दुनिया में इंसान खत्म तो नहीं हो गया ना, किसी ने ब्लॉक कर दिया तो किसी ने ब्लॉक नहीं भी तो किया है ना, उसके ऊपर काम करें, ठीक है। हमें सर से बोझ तो नहीं उतारना, सर से बोझ तो नहीं उतारना, खैर ख्वाही के जज्बे के साथ ही बताया लेकिन उल्टा बुरा रिस्पॉन्स देकर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो बस जवाब आपको मिल गया इंशाल्लाह कि सबने तो ब्लॉक नहीं किया ना, जिन्होंने अनब्लॉक किया हुआ है तो उनके साथ बात करें ना। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको ब्लॉक कर सकते भी नहीं, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं ना, अब वो आपको ब्लॉक कर देंगे तो उनका काम ही रुक जाएगा, उनके साथ काम करते रहें। ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, ये मेरा हुक्म नहीं है, ये किसी पीर साहब का, किसी मौलवी साहब का, किसी शेख साहब का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह जानता है कि सर से उतारने वाली चक्कर चल रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर खैर ख्वाही के साथ, क्योंकि खैर ख्वाही की भी आपने सारी अल्लाह की तरफ से बातें सुननी है ना कि अंतुब सला नफ्सुम बिमा कसबत, तो ये तो खैर ख्वाही के साथ करना है ना, तो अल्लाह जानते हैं कि आपके दिल में खैर ख्वाही है या नहीं है, सर से उतारने के चक्कर चल रही है, शेख साहब को जवाब देना पड़ेगा तो इस तरह से सर से उतारूं किसी तरह से कर दूं, या अल्लाह की रजा मकसूद है। इखलास तो भाई अल्लाह की रजा के लिए होता है, शेख साहब की रजा के लिए इखलास नहीं होता। ठीक है, तो अल्लाह तो फिर सब कुछ जानता है ना, तो इस तरीके से लगे रहे। ठीक है, हाँ अंदाज को अच्छा कर लें, कोई ज्यादा कंटेंट को, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कंटेंट को बेहतर करें, मैसेज को ज्यादा क्लेरिफाई करें, बलागुल मुबीन करें कि सुनने वाले को बात समझ में भी आने वाली बात हो। ठीक है, ये सब हमारा करने का काम है। ठीक है, हम किसी की नीयत के बारे में कैसे जान सकते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते, आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते, और आपको जानने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों आपको जरूरत पड़ गई किसी की नीयत जानने की? आप कुछ लगता है कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, इस वजह से आप ये सवाल कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने ब्लॉक किया है तो अब उसमें उनकी नीयत क्या है ब्लॉक करने की? अब ये आप कहेंगे अच्छा उन्होंने ब्लॉक किया इस नीयत से किया है, तो फिर अब ये तो फिर तफसील है ना कि भाई आप किस सिचुएशन के बारे में ये वाला सवाल कर रही है। एक जनरल सवाल का तो यही जवाब होगा ना कि आप नहीं जान सकती किसी की नीयत के बारे में, और कोशिश भी नहीं करने की जरूरत है किसी की नीयत के बारे में जानने। ठीक है, अच्छा उन्होंने लिखा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आपसे लेक्चर लेने आई थी, के साथ आपके लेक्चर लेने आई थी, सब कुछ बहुत बेहतर है, शुक्रिया आपका, रोज क्लास गई तुम, चले अलहमदुल्ला। अच्छा हुआ आपने नाम अपना नहीं रखा हुआ, जूम नाम क्या भाई क्लास में, किसी ने अपना नाम लिखा हुआ है ना तो वो अगर कोई अपना पर्सनल लेवल का, जैसे हस्बैंड से रिलेटेड कोई सवाल हो या अपने कोई और, तो फिर वो डायरेक्ट मैसेज में सवाल करेंगे, वो मुझे नजर आ जाता है, किसी दूसरे को नजर नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एवरी वन को डायरेक्ट करके सवाल लिखेंगे ना, तो फिर सबको नजर आएगा कि आपने सवाल लिखा है, तो अगर आपका अपना नाम होगा तो फिर सबको पता चल जाएगा कि भी आप जो है वो अपने हस्बैंड के बारे में सवाल कर रही हैं। ठीक है, तो उसमें फिर उस सिचुएशन में क्या करें, डायरेक्ट मैसेज के ऊपर सवाल करें। ठीक है, हमारा अंदाज भी गलत हो सकता है बात करने के लिए, तो हाँ अपने अंदाज को बेहतर करने की कोशिश करें, अंदाज को भी, कंटेंट को भी, यानी जो मवाद आप अगले बंदे से शेयर कर रही हैं उस मवाद के ऊपर बहुत, ये एक एक ऐसा एरिया है कि जिसको कि जो है ना वो हम ना समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यानी जब हमें किसी को नसीहत करने की की फिक्र लग भी जाती है ना कि अल्लाह का हुक्म है नसीहत करना, ठीक है, तो अब ये बात तो हम काफी पहले से सुनते आ रहे हैं और उम्मीद है कि हमें ये बात समझ में भी आ गई है कि भाई अपना अमल अपना किरदार भी अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है, तो नसीहत करने से पहले इधर अपने आप को भी तो ठीक करो, ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी हद तक समझ में आ गई है। ठीक है, यानी काफी लोगों को समझ में आ गई है काफी हद तक, इस तरह से हम अच्छा गुमान रखते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम मवाद अगले बंदे को कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, जो कंटेंट उसके साथ शेयर कर रहे हैं, क्या ये कंटेंट भी इस काबिल है कि अगले बंदे को समझ में आ सके, उससे रिलेट कर सके? इसकी तरफ हमारी तवज्जो अभी भी नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक अलग लेवल ऑफ एफर्ट है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, क्या चीज सबसे एसेंशियल है, क्या चीज सबसे बड़ी शर्त है, वो शर्त है इल्म हासिल कर, क्योंकि आप अगले बंदे से बगैर इल्म के बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, इल्म हासिल कर, इल्म हासिल करना फिर वही आलिमा कोर्स, या आलिम कोर्स नहीं, वो तो भाई अलग चीज है, बिल्कुल इल्म की बिल्कुल अलग एक ब्रांच है वो, आलिम आलिमा कोर्स नहीं, बल्कि इल्म हासिल करना जो शर्त है दावत व तबलीग के लिए वो है कि जो आप दीन चाहते हैं कि आपका मुखातब आपकी ऑडियंस भी उस दीन को सही समझ ले और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे, दीन की समझ तो हासिल करे ना कि ये दीन है क्या, ये दीन किस लिए आया है, ठीक है, इस दीन की बुनियाद क्या है, इस दीन की बुनियाद के ऊपर जो दीन की इमारत है वो इमारत क्या है, ये इल्म हासिल करें, ठीक है। और दरस कुरान इसी मकसद से किया जा रहा है, इसी मकसद से किया जा रहा है कि हम दीन को समझें, और फिर दूसरा इल्म हासिल करना अपनी ऑडियंस का इल्म हासिल करें, राइट, जिससे बात कर रही है उसका इल्म हासिल करें कि वो कौन है, उसका पस मंजर क्या है, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, उसकी सोच का जाविया क्या है, उसकी सोच का मेयार क्या है, उसके पास कामयाबी और नाकामी का मेयार क्या सेट हुआ हुआ है, कहां से उसकी उठान हुई है, कहां से उसकी जहन साजी हुई है, कहां से उसका दिलो दिमाग बना है, ये अपने ऑडियंस को जानना, ये इल्म हासिल करना है, ये इल्म हासिल करना है। हम चाहते तो हैं कि दूसरा बंदा भी नमाजें पढ़ना शुरू कर दे, पर्दा करना शुरू कर दे, दीनदार बन जाए, लेकिन हम उसके बारे में जानना जानने की मेहनत नहीं करना चाहते, राइट। तो अपने मवाद के बारे में इल्म हासिल करना और जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में इल्म हासिल करना, अल्लाह के इस हुक्म के ऊपर, वज़क्किर बिही अंतुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, इस हुक्म के ऊपर हम अमल नहीं कर सकते इस होमवर्क के बगैर, इसको होमवर्क करना भी कहते हैं ना, पहले काम करने से पहले आप जरा होमवर्क करके तो आए, जरा घर से काम करके आए उसके बाद फिर आप वो काम कीजिएगा, उसको कहते हैं मुहावरे में कह देते हैं होमवर्क करके आओ जरा अपना, ठीक है। बच्चों को किस एज से कुरान पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, कुरान मजीद पढ़ाना जो है ना वो अल्फाज पढ़ाना, यानी कारी साहब के पास बिठा करके या खुद जो है वो कायदा और अल्फाज जो पढ़ाते हैं, ये तकरीबन 4.5 साल 5 साल की उम्र से, या कुछ बच्चे जरा और आपके पास माशाल्लाह अच्छा सिस्टम है तो 4 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर सकते, ठीक है, लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं पढ़ाना शुरू कर दें उसको, जब तक कि उसकी अच्छी 8 साल की उम्र ना हो जाए। और उसमें भी तर्जुमा भी जो है ना वो हर जगह नहीं पूरा, कुछ लोग हैं ना माशाल्लाह इतना आशिक कुरान बन जाते हैं कि वो अपने छोटे बच्चे को, 7 8 साल के बच्चे को जो है ना वो पूरा का पूरा कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं बिल्कुल भी ऐसी गलती ना कीजिए, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे मजामीन हैं जो कि उस बच्चे के लेवल के बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पहले ईमानी तरबियत, पहले तो हमें यह सीखना है कि ईमान क्या चीज होती है, माओ को नहीं पता ईमान क्या चीज होती है, मुसलमान तो बने हुए हैं ईमान का हमें नहीं पता कि ईमान क्या चीज होती है, तो माओ को ईमान का कुछ नहीं पता कि ये क्या चीज होती है, तो उनको ये भी नहीं पता कि बच्चों की ईमानी तरबियत करनी है और वो कैसे करनी है, ठीक है। तो ये एक मुस्तकिल मौजू है, इसके ऊपर हम काफी पीछे बात कर चुके हैं, अगर आप नई स्टूडेंट हैं तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके पूछ लिएगा कि भाई पीछे की जरा रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिल जाए, तो ईमानी तरबियत के ऊपर भी हमें जरा एक्सप्लोर करना है ये एरिया जो कि अनएक्सप्लोर्ड है हमारा, ये हम ज्यादा से ज्यादा दीनदार होने के बाद आमाली तरबियत करते हैं, यानी आमाल सिखा देते हैं, रटना सिखा देते हैं, पढ़ना सिखा देते हैं, ईमानी तरबियत नहीं कर रहे होते हैं, और ये बहुत बुरा हम अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं ईमानी तरबियत ना करके, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ बात हो रही थी इन्ना हुदल्लाह, ठीक है ना, ये उल्टे सीधे आपको जो मशवरे चाहिए ना अपनी मर्जी के, ये मशवरे आपको फायदा नहीं देंगे बल्कि अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आई है यही फायदा देगी, वह उमिर ना, और हमें तो हुक्म हुआ है लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, कि हम अपने आलमीन के रब के सामने सरे तस्लीम खम कर दें, अपने आप को सुपुर्द कर दें अल्लाह के, इसका हमें हुक्म हुआ है, यानी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म किया पुल, और कुल के बाद जो है ना ये सारे अहकाम चल रहे हैं कि आप उनको ऐसे कह दें कि हमें तो ये हुक्म हुआ है, और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अन अकीमुस्सलाता वत्तकूहु वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, इसके बारे में पिछली क्लास जो बुध को हुई थी, पिछले बुध को जो सॉरी पिछले पीर को जो क्लास हुई थी, ठीक है, उसमें बड़ी तफसील से बात हुई थी कि नमाज कायम करने का मतलब नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है कि जिसके अंदर आप खुद भी नमाज पढ़ सकें और दूसरे भी जो आपके साथ रहने वाले हैं वो भी नमाज पढ़ सकें। इसकी बड़ी तफसील है कि इसमें उस माहौल से बचाना भी लाजिमन शामिल है कि जो माहौल नमाज के खिलाफ इंसान को उकसाता है, ठीक है। और वत्तकूहू, तकवा इख्तियार करें। तकवा इख्तियार करने का भी क्या मतलब है? बचना, बचना गुनाह से, बचना गुनाह के माहौल से, बचना, यह है तकवा इख्तियार करना। तो अकीमु सलात, ये भी सिर्फ नमाज पढ़ करके इस हुक्म पे अमल नहीं हो सकता जब तक कि गुनाह से और गुनाह के माहौल से ना बचा जाए। और तकवा मजीद इस बात को क्लियर कर देता है, वह तकूहू का हुक्म, के गुनाह से बचो, ठीक है। इसी को जो है वो दफ़ई मुदर्रत भी कहा जाता है कि जरर पहुंचाने वाली चीजों से, नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को दफा करना, दूर करना अपने से, और यही तकवा है। और इकाम उस सलात के हुक्म के ऊपर तकवा के बगैर आप अमल नहीं कर सकते, ठीक है। वो मारे बांधने की नमाज होती है, या अगले बंदे को जो है वो चीख चिल्ला करके नमाज पढ़ा दी बच्चे को, लेकिन जैसे ही आप टलेंगी वैसे ही उसकी नमाज खत्म हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ही भयानक किस्म के हालात इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। खाली नमाज नहीं खत्म होती, ईमान ही खत्म होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हजरत मुफ्ती साहब यहाँ पे जो है वो अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वही है जिसके सामने तुम इकट्ठे हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी बड़ाई बयान करी। चंद चीजें जो है वो मारूफ मसाइल में से भी आगे पढ़ लेते हैं। इस बारे में 10 मिनट अभी हमारे पास है इस क्लास के, क्योंकि रमजान मुबारक में 1 घंटे के दरस कुरान होता है। तो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह पेज नंबर 373 के ऊपर फरमाते हैं आखिरी पैराग्राफ, कि चूंकि दुनिया में इंसान इसका होगा है, पीछे बात चल रही थी ना कि वो कोई फिदिया दे करके मुसीबत से निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नहीं निकल सकेंगे, उनसे फिदिये को कबूल ही नहीं किया जाएगा, रैंसम को, उनसे पैसे को कबूल ही नहीं किया जाएगा, माल दौलत कबूल ही नहीं की जाएगी। तो अब इसकी तफसीर में हजरत लिखते हैं कि दुनिया में इंसान इस बात का आदी होता है, खोगर का मतलब आदी होता है, कि अगर कभी कोई गलती या जुल्म किसी पर कर बैठा है और उसकी सजा उसके सामने आ गई है, तो सजा से बचने के लिए 3 किस्म के जराए इख्तियार करता है। कभी अपनी जमात और जत्थे का जोर उसके खिलाफ इस्तेमाल करके अपने जुल्म की पादाश से बचने की कोशिश करता है, ठीक है। मुसीबत में फंस गया तो अब अपने यानी जोर इस्तेमाल करता है मुसीबत से निकलने के लिए, और अगर उससे आजिज हो गया कि जोर इस्तेमाल नहीं कर सकता मुसीबत से निकलने के लिए, तो बड़े लोगों की सिफारिश से काम लेता है, जिनके पास जोर होता है उनकी सिफारिश करवाता है, ठीक है। और अगर ये भी तरीका भी नहीं चल सकता, तो फिर ये कोशिश करता है कि अपने आप को सजा से बचाने के लिए कुछ माल खर्च करे, माल खर्च करके, जिसको कि हम कहते हैं, हमने समझ रखा है, सदका दे करके मुसीबत से निकल आते हैं। सदका देकर के हम मुसीबत से निकल आएंगे, क्योंकि सदका जो है वो हदीस में पढ़ा था कि मुसीबत को टालता है, नहीं, बल्कि सदका जो है वो मुसीबत को टालने का मतलब क्या है, कि सदके के जरिए से अल्लाह को राजी करना, कि अल्लाह जब अपने बंदों की मदद करते हुए किसी गुनाहगार को देखता है सदके के जरिए से, सदका खैरात के जरिए से आप अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं कि मेरे बंदों की मदद कर रहा है, मेरे बंदों की मुसीबत में उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो है ना वो आसान हो जाता है अल्लाह को राजी करना, लेकिन तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं, जैसे उन्होंने मर्दों की कास में लिखा भी है, ठीक है, कि अपने किसी अमल का सहारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। तो इस मुसीबत से निकलने के लिए तो तौबा करनी पड़ेगी, फिर सदका खैरात जो है वो इस तौबा के ऊपर इस्तेकामत का सबब बन जाएगा। सदका खैरात तौबा के ऊपर इस्तेकामत का सबब बन जाएगा, कि अल्लाह ताला फिर मेहरबानी फरमा के इसको तौबा पे इस्तेकामत भी अता फरमा देंगे, ठीक है। तो ये रैंसम नहीं है कि अल्लाह को जो है वो कोई रिश्वत दे करके जो है वो मुसीबत से निकल आएंगे। सदका किसी रिश्वत का नाम नहीं है। रिश्वत किस चीज को कहते हैं? कि थ्रू प्रॉपर चैनल आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है ना, जो सही तरीका है उस तरीके से आप काम नहीं करना चाहते, बल्कि आप कुछ पैसे दे करके अपना काम निकालना चाहते हैं। तो प्रॉपर चैनल क्या है मुसीबत से निकलने का? सदका खैरात देना, सॉरी तौबा करना, प्रॉपर चैनल क्या है मुसीबत से निकलने का, अल्लाह से माफी मांगना। लेकिन कोई कहे नहीं नहीं मुझे नहीं माफी मांगनी, मुझे नहीं करनी तौबा, मैं कुछ दे दिला करके निकल आऊंगा इससे, राइट, गरीबों को कुछ दे दिला दूंगा, तौबा वोबा कोई नहीं करनी मुझे, नादिम नहीं होना मुझे अपने गलती गलती के ऊपर। तो नहीं, ये तुम्हारी तुम्हारी जो सदका है ना, ये फिर वो फिदिया है जो कि तुम दे के निकलने की कोशिश कर रहे हो, ये तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में बतला दिया कि खुदा के मुजरिम के लिए सजा से बचाने वाला ना कोई दोस्त अजीज हो सकता है, ना किसी सिफारिश बगैर अल्लाह ताला की इजाजत के चल सकती है, और ना कोई माल कबूल किया जा सकता है, बल्कि अगर सारे जहान का माल भी उसके कब्जे में वो में हो और वो इस सब माल को सजा से बचने का फिदिया बनाना चाहे, तब भी ये फिदिया उसे कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वी नीड टू नो एंड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सदका एंड फिदिया। ठीक है, यहाँ पर फिदिया की या अदल का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आयत के अंदर, तो वो सदका यहाँ पे मुराद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आखिर आयत में फरमाया कि उलाइक अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू लहुम शराबुन मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून, कि यानी ये वो लोग हैं जो अपने आमाल बद की सजा में पकड़ लिए गए हैं, उनको पीने के लिए जहन्नम का खौलता हुआ पानी मिलेगा, जिसके मुताबिक दूसरी आयतों में है कि वो उनकी अंतड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर उड़ा देगा, के अलावा दूसरे भी दर्दनाक किस्म के अजाब होंगे उनको उनके कुफर और इनकार के बदले में। ठीक है, अब ये जो हम ये तफसीर पढ़ते हैं या आयात पढ़ते हैं ना, तो एक बड़ा हॉरिफिक किस्म का जो है ना वो हमारे सामने एक पिक्चर आती है, और हम कहते हैं कि भाई ये तो कुरान मजीद के अंदर बड़े सख्त किस्म की और बड़ी तशद्दुद आमेज किस्म की जो है वो बातें हैं, हालांकि हमने तो सुना था कि रहमत ही रहमत है और सब कुछ सब सब सेट है, सब हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, ये किधर से आ गया ये अंतड़ियां खोलने वाला पानी और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ये सब। भाई ये क्यों है, ये सिर्फ जो है ना ये इसलिए है कि हम दूसरों के ऊपर जो जो मुसीबतें नाजिल करते हैं अपने गुनाहों की वजह से, दूसरों के लिए मुसीबत बनते हैं, उनको अजियतें पहुंचाते हैं, हक मारते हैं, हम इससे डर करके बच जाएं। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला बस खामखा की गिदड़ भपकियां दे रहे हैं और करना कराना कुछ नहीं है अल्लाह ताला ने, नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो कहा है वो तो करेगा अल्लाह ताला, ठीक है, लेकिन ये अल्फाज इस दर्जे के क्यों इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की मशीयत ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम करें ही नहीं ऐसी हरकत जिसकी वजह से जो है वो दूसरे इंसानों को और दूसरी मखलूक को जो है वो तकलीफ पहुंचे। क्योंकि जब हम दीन पे अमल नहीं करते ना, ये दीन जो है ये कोई कोई इंसानों का बनाया हुआ, कोई कोई किसी कंसोर्शियम का बनाया हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी है, ठीक है, कि उन्होंने अपने तौर पे एक बना लिया, अब लोगों को कहा जा रहा है कि तुम मान लो मान लो मान लो मान लो उनकी बात, ठीक है, ये कोई थोड़ी है इस तरह का मामला। भाई ये तो हमारी एक एक चीज को गवर्न करना है और एक एक चीज को जो है वो सही तरीके से रखने का तरीका है, ठीक है, जिसमें कि हमारी अपनी जिंदगी भी मुसीबतों से बच जाए और जो है ना वो दूसरों की जिंदगी भी हमारी वजह से मुसीबत बनने से बच जाए। ठीक है, दीन तो ये है, हुकूक की अदायगी है ना, हर एक के हुकूक जो हैं तुम्हारे ऊपर वो तुम अदा करो, यही तो दीन है सारा का सारा। तो अब कोई अगर आपसे आके कहे कि भाई देखो तुम्हारे सामने जहर पड़ा हुआ है, जरा जहर मत पीना, ठीक है ना, लेकिन ये जो सुनने वाला है क्या है कि नहीं नहीं मुझे तो क्या मसला है, मैं जहर पीना है मुझे भाई, फिर वो हाथ आगे बढ़ाना शुरू कर दे जहर की तरफ। तो अब वो बंदा जो कि चाहता है कि यार ये बच जाए, ये जहर पिएगा, मुझे पता है कि ये जहर पी करके ना ये जहर इतना खतरनाक है, अब ये इसको खत्म कर देगा बिल्कुल, और वाकई इसकी जो है वो यानी शायद इंटेस्टाइन जो है ना वो कट जाए इस जहर को पीने की वजह से, तो वो जरा अब नेक्स्ट टाइम क्या बोलेगा, सख्ती से बोलेगा ना थोड़ा सा, नहीं रुक जाओ जहर को पीने से, अभी भी ये बड़े चला जा रहे हो जहर की तरफ, अब वो क्या करेगा और सख्ती से बोलेगा, बल्कि अगर उसके लिए मुमकिन हुआ तो वो फिजिकली रोकने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कोई वो बदमाशी दिखा रहा है वो शख्स जो आपको जहर से रोकने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है, आपको एक दर्दनाक जो है वो मौत से बचाने के लिए जो है वो सख्ती कर रहा है या आपको जोर आवाज से बोल रहा है, तो ये कोई बदमाशी हो रही है क्या ये? या ये आपके साथ खालिस्तन रहे में, राइट? लेकिन आप है कि बात ही सुन करके नहीं दे रहे, चल बड़े बड़े चले जा रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है? तो मसला सारा ये है कि हम कुरान मजीद को एक बहुत ही यानी एक बायस किस्म के बैकग्राउंड से जो पढ़ते हैं ना, जो कि हमारा बायस जो है वो हमारे तालीमी निज़ाम, खानदानी निज़ाम और मीडिया निज़ाम से हमारा एक ऐसा बायस बन चुका है, एक ऐसा हमारे जहन के अंदर तासुर बन बन चुका है इस दीन के बारे में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, अगरचे कि हम इसको एडमिट ना करें, लेकिन इस क्लास के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके अपने खानदान वाले जो कि ऐसे ही सोच रहे हैं, आपको पता भी शायद ना हो या आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन है इस तरह का मामला। कितनी औलादें हैं, कितने नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जो कि इस वक्त कुरान के बारे में यही सोच रहे हैं कि इसके अंदर तो जो है ना ये दहशत और बर्बरियत के अलावा और कुछ है ही नहीं, और ये जो इसी वजह से जो दहशत गर्द होते हैं वो कुरान मजीद को पढ़ रहे होते हैं, उसकी आयात जो है वो तिलावत कर रहे होते हैं और दहशत गर्दी कर रहे होते हैं। तो देखो ये तो दीन ही सही नहीं, हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे कितने बच्चे बच्चियां, नौजवान नौजवान खवातीन औरतें इस कुरान के बारे में वाकई अब ऐसा ही सोच रहे हैं। पाकिस्तान अजीम शान के अंदर रहने वाले, खुदादाद मुमलिकत है, खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया वगैरह सब आप कह लें, वहां के स्कूलों कॉलेजों के कितने तलबा तालबात जो है वो ऐसी सोच रहे हैं। क्यों ऐसे सोच रहे हैं? क्यों ऐसे जो है उनका एटीट्यूड बना हुआ है? हमें तो लोग बताते हैं ना, अपने हालात भी बताते हैं और अपने करीबी किसी रिश्तेदार या किसी जो है वो दोस्त है आपकी, कि भाई वो मेरा जो क्लास का बच्चा है वो तो ये बातें कर रहा था, ठीक है? इस वजह से मैं बातें करूं ना, मुझे कोई वही को थोड़ी नाजिल हुई है कि ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो बायस का हमें कुछ करना पड़ेगा कि ये जो बायस हमारा ये मीडिया बना रहा है और तालीमी निज़ाम बना रहा है ना, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है? तो आखिरी फरमाते हैं आखिर में इस आखिरी ऐसे भी मालूम हुआ कि जो लोग आखिरत से गाफिल सिर्फ दुनिया की जिंदगी पर मगन है, उनकी सोहबत मुजालसत भी इंसान के लिए मोहलिक है, उसका अंजाम ये है कि उनकी सोहबत में रहने वाला भी इस अजाब का शिकार होगा जिसमें में वो मुब्तला है, क्योंकि दिल को दिल सिरा होती है, असर पड़ता है और अब जो है फिर गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। अब हम इन माहौल के जो मसले हैं उनको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जी हमारा बच्चा, हमारी औलाद जो है वो जिस माहौल में जा रही है, स्कूलों के बहाने से जा रही हो या खानदान की क्या कहते हैं उसको सिला रहमी, सिला रहमी भी तो हदीस का हुक्म है ना कि सिला रहमी करो, सिला रहमी के फायदे हैं, लेकिन हमने इसकी मफहूम तो समझा नहीं है। सिला रहमी किस चीज को कहते हैं, उसकी क्या लिमिट्स हैं, राइट? तो जिस तरह बाकी हदीसों को हम अब्यूज कर रहे होते हैं, उसी तरह सिले रहमी की हदीसों को भी हम अब्यूज करके हम समझते हैं कि जी बुरे माहौल में, खानदान के बुरे माहौल में जहां पे ड्रग्स की बातें हो रही हैं, कजन्स बैठ करके जो है वो फिल्मों गानों और जो है वो गैंग की प्रॉब्लम्स और जो है वो यानी गैंग के अहवाल और जो है वीडियो गेम्स और डिवाइसेस और बेहयाई और बेशर्मी, ये सारी बातें बैठ के कजन्स कर रहे हैं, तो हम सिला रहमी के नाम पर अपने बच्चों को जो है वो कजन से बड़ी अच्छी जो है वो मुलाकातें करवाते हैं, क्योंकि हमारा दीन जो है वो तो खानदानी खानदान को जोड़ने का हुक्म देता है। अब आपका बच्चा जब ऐसे कजन्स के साथ बैठेगा या बैठेगी, ठीक है, जहां पर इस किस्म की जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं और इस किस्म की वो अपने मामलात बता रहे हैं और बड़े अच्छे से फखर फखरिया अंदाज में बता रहे हैं, तो अब आपके बच्चे का क्या दीन उसके बाद बाकी बचेगा, ठीक है? लेकिन हम क्योंकि वही सेलेक्टिव दीन है हमारा, और सेलेक्टिव भी क्या बल्कि असल में जहालत की बुनियाद पर हमारा दीन है सारा का सारा। हमें इल्म ही नहीं कि किसी चीज का क्या मतलब क्या होता है, किसकी चीज की क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या हुदूद और हुयूद होते हैं, तो इस वजह से ना हम दीन को यूज नहीं कर रहे होते, दीन को अब्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस माहौल से भाई बचाना ये माँ बाप की फर्ज का की जिम्मेदारी है। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आज की ज्यादातर क्लास जो है वो तमहीद के ऊपर हुई, कुरान मजीद के बारे में, और फिर जो है आयात पढ़ी है इनका, फिर हमने दोबारा से एक तरह से तर्जुमा एक बार फिर पढ़ लिया, और फिर जो है वो हम वारिफ मसाइल पढ़ने शुरू किए हैं आखिरी के 10 मिनट में, तो वो भी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन बहुत अहम बातें इनके अंदर अभी बाकी हैं। अल्लाह ताला ने तौफीक दी और आसान फरमाया, तो कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी, अगरचे कि हम सफर पर अभी निकल रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कल भी किसी तरीके से क्लास कर लें, ऑनलाइन ही करनी है, अल्लाह ने आसान फरमाया, हो जाएगी, वरना फिर परसों से जो है वो सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबके आने बैठने को, इल्म हासिल करने को कबूल फरमाए, और इसके ऊपर अमल करना और इसको समझना और इसकी समझ को आगे पहुंचाना इन सबको हमारे लिए आसान फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहिर रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।